بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتنت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگیہ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا۔ پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کاریہ کے لیے تیار کر دیں گے۔ اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاب پرد ہو، اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا، کنتو اتین دربھاگیہ والا اس سے کترائے گا، وہی جو بڑی آگ میں گر پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ نشچت روپ سے جس نے اپنے آپ کو پوتر بنا لیا وہ سفل ہو گیا، اور جس نے اپنے پالنہار کے نام کا اسمرن کیا پھر نماز ادا کی۔ نہیں، بلکہ تم تو سانسارک جیون کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ پرلوک ادھک اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ پر 9390 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ دوستوں، ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ دوستوں، آج بدھوار ہے، آبان ماہ کی 26، ربیع الثانی کی 11 اور نومبر کی 17 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اپرانت راجنیتک چرچا کا دینی کاریکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت آپ کاریکرم سنیں گے شوریہ گاتھا، اور سبا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تو دوستوں، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ شروں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ دیش کی ساری سمسیاؤں کے لیے ویگیانک سمادھان تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ افغانستان کے پنہ نرماڑ کے لیے تیار ہیں۔ عراق میں ترکی کی سینے چھاؤنی پر میزائلوں سے حملے ہوئے۔ کشمیر حیدر پورہ انکاؤنٹر پر سوٹھے سوال، پریجنوں نے نیائے کی مانگ کر دی۔ اور اب آپ وستار سے اختر رضوی سے سماچار سنیے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کا کہنا ہے کہ دیش کی ساری سمسیاؤں کے لیے ویگیانک سمادھان تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے ایران کے پرسدھ بدھ جیویوں، پروفیسروں اور میدھاوی چھاتر و چھاتراؤں سے ملاقات میں کہا کہ ہمارا دیش بودھک شمتا کی درشٹی سے دنیا کے مدھیم استر سے بھی اوپر ہے، اور یہ کیول کوئی دعویٰ نہیں بلکہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیش کی ساری سمسیاؤں کے لیے ویگیانک سمادھان تلاش کیا جا سکتا ہے، اور نئی اسلامی سبھیتا کے گٹھن کو سمبھو بنایا جا سکتا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ واستو میں ہمارا دیش اور ہماری جنتا بودھک شمتاؤں کی درشٹی سے میدھاویوں سے سمپن ہے، اور اسی لیے سامراجوادی شکتیاں کافی سمے سے ہم پر سافٹ وار تھوپے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے کہا کہ پچھلے 200 ورشوں سے سامراج اور ایران کے اس سمے کے ادھیکاری ایک ساتھ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ایران جنتا میں شمتا نہیں پائی جاتی، لیکن اسلامی کرانتی کی سفلتا نے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو وفل بنا دیا۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ سامراجوادی شکتیوں کے نرم یدھ یا سافٹ وار کا ایک طریقہ جو ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے اور اتیت میں کچھ زیادہ ہی تھا، وہ یہ ہے کہ ہمارا راشٹر اور اسی پرکار دوسرے راشٹروں کو جو میدھاوی ہیں انہیں ان کی شمتاؤں سے نشچیت کریں اور ان کو اس پرکار بنا دیں کہ وہ خود اپنی شمتاؤں کا ہی انکار کرنے لگیں۔ اسلامی کرانتی کا ورشٹھ نیتا کا کہنا ہے کہ اگر کسی راشٹر میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر شمتا نہیں پائی جاتی تو اسے لوٹنا اور تباہ و برباد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں ایران اور طالبان کے ورکنگ گروپ کی بیٹھک ہوئی۔ طالبان اور ایران کے ورکنگ گروپ کی بیٹھک میں سانسکرتک، آرتھک، راجنیتک، سرکشا، سیماورتی، ارجا اور پلائن کے مدوں کے بارے میں 7 کمیٹیاں بنائی گئیں۔ افغانستان کے معاملوں میں راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کے وشیش دوت حسن کاظمی قمی اور کابل میں ایران کے راجدوت بہادر امینیان ایران کے آرتھک معاملوں کے ادھیکاری کے ساتھ اس بیٹھک میں شامل ہوئے، جبکہ طالبان کی اور سے کرشی، شرنارتھی، آرتھک، ویاپار اور ادیوگ کے منتری شامل ہوئے۔ یاد رہے کہ افغانستان کے معاملوں میں ایران کے دوت راشٹرپتی کے وشیش دوت حسن کاظمی قمی ایک کوٹنائک اور آرتھک ششٹمنڈل کے ساتھ سوموار کو کابل پہنچے۔ ایران نے گھوشنا کیا ہے کہ وہ پڑوسی دیش افغانستان کے نو نرماڑ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ افغانستان کے معاملے میں ایران کے وشیش دوت نے بتایا کہ افغانستان ایسا دیش ہے جو پراکرتک سنسادنوں سے سمردھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نو نرماڑ کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ کابل میں بدھوار کو طالبان کے پرتنیدھی منڈل کے ساتھ بیٹھک میں حسن کاظمی قمی نے کہا کہ افغانستان کے کارخانوں اور ادیوگوں کو سکری کرنے کے لیے ایران تکنیکی اور انجینئرنگ سمبندھی سیوائیں دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو اپنی شمتاؤں کو پردرشت کرنے کا اوسر نہیں دیا گیا۔ ایران کے دوت کا کہنا تھا کہ نئی پرستھتیوں میں افغانستان کو اپنی چھپی ہوئی شمتاؤں کو نکھارنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مارگ میں اسلامی گڑتنتر ایران ہر پرکار سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ عراق میں ترکی کی سینے چھاونی پر چار میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ عراق کی سابری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار پورووتری عراق میں استھت ترکی کی زلیکان سین چھاونی پر چار میزائل فائر کیے گئے۔ اس سے پہلے 7 نومبر کو بھی ترکی کی اسی سین چھاونی کو 7 کیٹوشا میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ ابھی تک کسی گٹ یا ویکتی نے اس حملے کی ذمہ داری سویکار نہیں کی، کنتو ایسا لگتا ہے کہ حملہ آور دیشوں کے خلاف عراق کے کچھ پرتیرودھ کرتا گٹ سکری ہو گئے ہیں اور انہوں نے امریکہ سہیت سارے حملہ آور دیشوں کو اپنے دیش سے کھدیڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی گٹھبندھن نے سویکار کیا ہے کہ اس کے سینک الحدیدہ سے پیچھے ہٹے ہیں۔ یمن کے ورودھ سعودی گٹھبندھن کے پروکتا ترکی المالکی نے یہ بات سویکار کی ہے کہ اس کے سینک یمن کے الحدیدہ پرانس میں پیچھے کی اور ہٹے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے یمن کے سینکوں کے مقابلے میں اپنے سینکوں کے پیچھے ہٹنے کو وستھاپن کا نام دیا ہے، کنتو واستوکتا یہ ہے کہ یمنی جیالوں کے مقابلے میں سعودی گٹھبندھن کے سینکوں کو مجبوراً وہاں سے ہٹنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام ایک یوجنا کے انترگت کیا گیا۔ اس سے پہلے المیادین ٹی وی چینل نے یمنی سوتروں کے حوالے سے بتایا تھا کہ سعودی گٹھبندھن کی اور سے یہ کام یمن کے معارف شیتر کے پریورتنوں سے امریکہ اور یو اے ای کی چنتا کے کارن کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے بدھوار کو دکشنی دمشق کے ایک علاقے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے رات 12:45 پر سیریا کے اویدھ ادھیکرت علاقے گولان ہائٹس کی اور سے دکشنی دمشق کے ایک کھنڈر عمارت پر 2 میزائل فائر کیے، جن میں ایک میزائل کو مار گرایا گیا۔ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی تک اس حملے کا بیورا سامنے نہیں آیا ہے۔ بھارت نے انتت جموں اور کشمیر کے وپکشی نیتاؤں اور مرتکوں کے پریجنوں نے حیدرپورہ انکاؤنٹر پر آکروش ویکت کیا ہے۔ منگلوار کو ہوئی اس مٹبھیڑ میں 2 چھاپاماروں سہیت اس کے 2 سہیوگیوں کو مار گرایا گیا تھا۔ نیتاؤں و پریجنوں کا کہنا ہے کہ وہ چھاپاماروں کے سہیوگی نہیں بلکہ عام ناگرک تھے۔ انہوں نے اس کتھت ہتیا کی نیائک جانچ کی مانگ کی ہے۔ مرتک الطاف احمد بھٹ اور ڈاکٹر مدثر گل کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ دونوں کو سرکشا بلوں نے مار گرایا۔ bhaskar.com کے پاس پریجنوں کے ویڈیو ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سرکشا بلوں نے عام لوگوں کو مارا ہے۔ گھٹنا استھل پر کوئی آتنکی تھا ہی نہیں، وہاں کوئی گن شاٹس نہیں ہوا، سرکشا بلوں کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ الطاف بٹ کی بیٹی کا کہنا ہے کہ سرکشا بلوں نے میرے پاپا کو 2 بار گھٹنا استھل والی عمارت کی اوپری منزل پر بھیجا، تیسری بار بھی انہیں وہاں بھیجا گیا اور پولیس نے انہیں گولی مار دی۔ بھارت کے اچھتم نیالے نے سمودائک رسوئی یوجنا کو لاگو کرنے کے لیے اکھل بھارتیہ نیتی اپنانے کو لے کر کیندر کے جواب پر منگلوار کو گہری اپرسنتا ویکت کی اور یہ ٹپڑی کرتے ہوئے راجیہ سرکاروں کے ساتھ بیٹھک کرنے کے لیے اسے 3 سپتاہ کا سمے دیا کہ کلیانکاری سرکار کی پہلی ذمہ داری بھوک سے مرنے والے لوگوں کو بھوجن اپلبدھ کرانا ہے۔ پردھان نیادیش این وی رمنا، جسٹس اے ایس بوپنا، معاف کیجیے گا، پردھان نیادیش این وی رمنا، जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के हलफनामे से गहरी अप्रसन्नता जाहिर की, क्योंकि ये अवर सचिव के स्तर के एक अधिकारी द्वारा दायर किया गया था और इसमें प्रस्तावित योजना और उसे शुरू करने को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। न्यायालय भूख और कुपोषण से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई योजना तैयार करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन का जिक्र किया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। अय्यर ने मुगल बादशाहों का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए केवल 80% लोग ही असली भारतीय हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा था कि हम तो यहां राज करने आए हैं। बाबर ने महज 4 साल में हुमायूं को बताया कि अगर आप इस देश को चलाना चाहते हैं तो यहां के निवासियों के धर्म में दखल न दीजिएगा। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे के संचालन को अपने हाथ में लेने के लिए तुर्की लंबे समय से प्रयास कर रहा है। अनातोली समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्की के रक्षा मंत्री खलूसी आकार ने कतर के साथ वार्ता में काबुल हवाई अड्डे के संचालन को अंकारा के हाथ में दिए जाने के बारे में बात की। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन का मुद्दा अफगानिस्तान की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिवर्तनों को अंकारा बहुत निकट से देख रहा है। 2 दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने भी अपने संबोधन में इसी प्रकार की बातें कही थी। बेलारूस ने शरणार्थियों के संबंध में हर प्रकार के टकराव से दूर रहने की घोषणा की है। फ्रांस प्रेस के अनुसार बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि उनका देश पोलैंड की सीमा पर मौजूद शरणार्थियों के बारे में हर प्रकार के टकराव से दूर रहना चाहता है। इस समय पश्चिमी एशिया के देशों से संबंध रखने वाले 2000 से अधिक शरणार्थी बेलारूस और पोलैंड की सीमावर्ती क्षेत्र में मौजूद हैं। ये शरणार्थी पोलैंड के माध्यम से यूरोपीय देशों में जाना चाहते हैं। जिन स्थान पर ये शरणार्थी मौजूद हैं वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और शरणार्थियों के पास ठंड से बचने के लिए उचित सामान नहीं है। इससे पहले यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर आरोप लगाया था कि वो इस संघ को अस्थिर करने के लिए शरणार्थियों को राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहा है। बेलारूस ने इसका खंडन किया है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहती का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठाई है। साथ ही सुरक्षा परिषद, जिसका गठन 76 साल पहले हुआ था, ईरान ने इसमें सोवियत संघ की शिकायत की थी। फैसला ईरान के पक्ष में रहा। बाद में ईरान ने रूस की शिकायत की कि वो वादे पूरे नहीं कर रहा है और निर्धारित समय पर उसने ईरान की धरती से अपने सैनिक बाहर नहीं निकाले। इस बार भी ईरान की जीत हुई। इसके बाद ईरान में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में ईरान का मुद्दा उठाया और शिकायत की, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली।
آف اسلامک ریپبلک آف ایران۔
بھارت کی راجدھانی دلی میں 40واں انتراشٹری ویاپارک میلہ لگایا گیا ہے۔ اس میلے میں کئی دیشوں کی کمپنیاں اپنے اپنے اتپادوں کو پیش کر رہی ہیں۔ اسلامی گرنتھ ایران کی اور سے 3 اسٹال لگائے گئے ہیں، جن میں ایرانی کھجور، کیسر، نگینوں اور ایرانی کپڑوں آدی کو پیش کیا گیا ہے۔ بھارت میں ایرانی اتپادوں کو بہت مہتو دیا جاتا ہے اور بھارت میں ایرانی وستوں کے خریدار بھی بڑی سنکھیا میں ہیں۔ گیات ہے کہ کورونا مہاماری کے کارن پچھلے ورش یہ میلہ نہیں لگایا گیا تھا۔
ایران کا تو سبھی کچھ، یہ تو بہت زیادہ بالکل الگ طریقے کا ٹیسٹ ہے۔
رویوار کو ٹھیک اسی سمے برٹش ادھیکاری لندن شہر کے سینٹر میں اپستھت ہو کر ہر سال کی طرح پرتھم وشو یدھ میں مارے گئے سینکوں اور ان کے پریجنوں کو یاد کر رہے تھے۔ وہاں سے 360 کلومیٹر دور لیورپول میں مہیلاؤں کے ایک اسپتال کے پاس کار بم دھماکہ ہوا، جس میں وہاں موجود لوگوں اور برٹش ادھیکاریوں کی چنتائیں بڑھ گئیں۔ برٹن کے آتنکواد نرودھک دستے اور پولیس پرشاسن نے کئی گھنٹے بعد اس دھماکے کے بارے میں بہت کم ہی جانکاری دی، لیکن جب دھماکے کی خبر اور تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی تو لوگ ادھک سے ادھک اس بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا پریاس کرنے لگے۔ شوتاؤ، ایران نے سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد میں سدھار کی مانگ اٹھائی ہے۔ ساتھ ہی سرکشا پریشد، جس کا گٹھن 76 سال پہلے ہوا تھا، ایران نے اس میں سوویت سنگھ کی شکایت کی تھی۔ فیصلہ ایران کے پکش میں رہا۔ بعد میں ایران نے روس کی شکایت کی کہ وہ وعدے پورے نہیں کر رہا ہے اور نردھارت سمے پر اس نے ایران کی دھرتی سے اپنے سینک باہر نہیں نکالے۔ اس بار بھی ایران کی جیت ہوئی۔ اس کے بعد ایران میں تیل ادیوگ کے راشٹریکرن کے بعد برٹن نے سرکشا پریشد میں ایران کا مدعا اٹھایا اور شکایت کی، مگر اسے کامیابی نہیں ملی۔ نیویارک سے IRIB کے لیے کامران جزادے کی رپورٹ پیش کریں، ساتھ ہی احمد عباس۔
اب ایران نے سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد میں سدھار کی مانگ کی۔
ایران
وہی سرکشا پریشد جس کا 76 سال پہلے گٹھن ہوا، تو اس میں ایران نے سوویت یونین کی شکایت کی تھی۔ فیصلہ ایران کے پکش میں رہا تھا۔ بعد میں ایران نے روس کی شکایت کی کہ وہ وعدے پورے نہیں کر رہا ہے اور نردھارت سمے پر اس نے ایران کی دھرتی سے اپنے سینک باہر نہیں نکالے۔ اس بار بھی ایران کی جیت ہوئی۔ اس کے بعد ایران میں تیل ادیوگ کے راشٹریکرن کے بعد برٹین نے سرکشا پریشد میں ایران کا مدعا اٹھایا اور شکایت کی، مگر یہ ایجنڈے سے باہر ہو گیا۔ صدام شاسن کی جنگ کے دوران کئی بار ایران سرکشا پریشد پہنچا۔ پرمانو معاملے میں درجنوں دفعہ ایران کا وشے چرچا کا مدعا رہا۔
آف اسلامک ریپبلک آف ایران۔
اور اب سنیکت راشٹر سنگھ میں ایران کے راجدوت مجید تخت روانچی کہتے ہیں کہ ویٹو پاور ایتیہاسک اسمانتا ہے۔ یہ امانویہ پابندیاں جو ایران پر لگی ہیں وہ سرکشا پریشد کی ناانصافی کا پرتیک ہے، جو سرکشا اور شانتی میں کسی طرح کی مدد نہیں کر رہی ہیں۔
وی آر اسٹینڈ ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ ایکٹیولی اینڈ کنسٹرکٹیولی ٹو دی آئی جی اینز ورک۔ آئی تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ۔
ایران کی مانگ یہ تھی کہ دیشوں کی سہمتی سے سرکشا پریشد کا سدھار شروع کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سرکشا پریشد کے ڈھانچے میں کوئی بدلاؤ آئے گا؟ فی الحال تو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ نیویارک سے IRIB کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
भारत की राजधानी दिल्ली में 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला लगाया गया है। इस मेले में कई देशों की कंपनियां अपने अपने उत्पादों को पेश कर रही हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की ओर से 3 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें ईरानी खजूर, केसर, नगीनों और ईरानी कपड़ों आदि को पेश किया गया है। भारत में ईरानी उत्पादों को बहुत महत्व दिया जाता है और भारत में ईरानी वस्तुओं के खरीदार भी बड़ी संख्या में हैं। ज्ञात है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष ये मेला नहीं लगाया गया था। पूरी जानकारी के साथ दिल्ली से शमशाद काजमी।
40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाया गया है, जहाँ देशी विदेशी कंपनियाँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस बार सीमित स्तर पर देशी विदेशी कंपनियों ने भाग लिया है और लगभग 3,000 प्रदर्शक इस मेले में भाग ले रहे हैं। इस्लामिक गणतंत्र ईरान, तुर्की, बहरैन, संयुक्त अरब इमारात, कर्गिस्तान, ट्यूनिस, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे 9 देश इस व्यापारिक मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। इस व्यापारिक मेले में ईरान के 3 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां खजूर, जाफरान, नगीनों, आभूषणों और दूसरे सामानों का प्रदर्शन किया जा रहा है।
ईरान तो एक ट्रेडिशनल कंट्री है इन चीजों का सोर्स जो है। इंडिया में ज्यादातर ये चीजें तो ईरान से ही आती है ना।
नहीं, ईरान का तो सभी कुछ, ये तो बहुत ज्यादा बिल्कुल अलग तरीके का टेस्ट है। ईरान का खजूर बहुत टेस्टी है।
ईरान के एक व्यापारी ने कहा कि कोरोना की कठिनाइयों के कारण पहले तो इस मेले में भाग लेने का इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि पिछले 12 वर्षों से हम यहाँ हर साल आते रहे हैं, अतः हमने इस बार इस व्यापारिक मेले में भाग लेने का मन बनाया, ताकि हमारी स्थिति सुरक्षित रहे और हमारे खरीदार निराश न हों। ईरानी उत्पादों को भारत के बाजारों में काफी महत्व दिया जाता है और ईरानी उत्पादों के ग्राहक भी बड़ी संख्या में हैं। बहरीन के स्टॉल पर विभिन्न प्रकार के परफ्यूम और इतर को खरीदारों के लिए रखा गया है। दस्तकारी का 33वां हुनर हाट मेला भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का हिस्सा बन गया है और यहां भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। कोरोना संकट के कारण पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला नहीं लग सका था, लेकिन अब इस मेले में आने वालों ने स्थिति बेहतर होने और मेले के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
अच्छे दिन आएंगे, लोगों को पसंद आएगी।
एक साल के अंतराल के बाद 14 नवंबर से दिल्ली में आयोजित ये व्यापारिक मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा और ये मेला 19 नवंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। शमशाद कासमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
रविवार को ठीक उसी समय ब्रिटिश अधिकारी लंदन शहर के सेंटर में उपस्थित होकर हर साल की तरह प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों और उनके परिजनों को याद कर रहे थे। वहां से 360 किलोमीटर दूर लिवरपूल में महिलाओं के एक अस्पताल के पास कार बम धमाका हुआ, जिसमें वहां मौजूद लोगों और ब्रिटिश अधिकारियों की चिंताएं बढ़ गईं। लंदन से मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही कायम रिजवी।
कोरोना की नई लहर ने यूरोप को नई मुश्किलों में डाल दिया है। नई लहर जिसने पूर्वी यूरोप को अपनी चपेट में लिया है, अब वो पश्चिमी यूरोप की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन के अधिकारियों के अनुसार इसने सर्दी के मौसम में संक्रमण का एक तूफान सा देश में पैदा कर दिया है। ब्रिटेन में पिछले एक महीने के दौरान 1 मिलियन नए लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इस प्रकार इस देश में 96 लाख से अधिक लोग कोविड-19 का अब तक शिकार हो चुके हैं। हम जानते हैं कि अधिक से अधिक लोग कोरोना से प्रभावित होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में मास्क का प्रयोग करते हुए भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचा जाए और वैक्सीन लगवाई जाए। वैक्सीन तुमको और तुम्हारे परिवार को कोरोना से सुरक्षित रख सकती है। वैक्सीनेशन के समय से ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या इसमें ग्रस्त होने वालों की तुलना में कम तो हुई है, लेकिन राष्ट्रीय डेटा रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या 1,63,000 को अब पार कर चुकी है, जो بہت ادھک دکھائی دیتی ہے. مرتکوں کا یہ آنکڑا واسطو میں بہت ہے. کسی مہاماری میں اتنی موتیں عجیب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنسنکھیا کے انوپات کے حساب سے کورونا میں سب سے ادھک جانے ہمارے ہی دیش میں اب تک گئی ہیں. سرکار نے آرمبھ میں تو کورونا کو اندیکھا کیا, شاید بری ارتھ ویوستھا کو روکنے کے لیے ایسا کیا گیا ہو. برٹین لمبے سمے سے وشو میں کورونا سنکرمتوں کی سنکھیا کے حساب سے چوتھے نمبر پر چلا آ رہا ہے. برٹین میں کورونا سنکرمتوں کی تیزی سے بڑھتی سنکھیا نے کچھ سیمتاؤں کو بڑھانے کی مانگ کو تیز کر دیا ہے, لیکن برٹین کی سرکار جسے لاک ڈاؤن کے کارن بہت ادھک آرتھک شتی ہوئی ہے, اس نے لاک ڈاؤن کے استھان پر کورونا کی تیسری ڈوز لگوانے کو پراتھمکتا میں رکھ دیا ہے. لندن سے آئی آر آئی بی کے لیے مجتبیٰ قاسم زادے کی رپورٹ.
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنت ایران کی آواز. شوتاؤ, ہماری سبھا کا انتیم کاریکرم ہوگا آج کل, پر اس سے پہلے آپ سنیے ساپتاہک کاریکرم شوری گاتھا.
شوریہ گاتھا.
دوستوں, پروگرام شوریہ گاتھا کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں فاؤ پرائدیپ کے پتن کے پرینام, شلمچے اور مجنون دویپوں میں ایران کی رکشا پنکتی کے ٹوٹنے اور فارس کی کھاڑی کے اوپر اڑ رہے ایران کے یاتری ویمان کا امریکی یدھپوت وینسس سے داغے گئے دو میزائلوں سے گرنے کے بارے میں چرچا کریں گے.
دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام شوریہ گاتھا میں 80 کے دشک میں ایران پر عراق کے باسی صدام شاسن کے حملے کے مقابلے میں ایرانی راشٹر کے پوتر پرترکشرا اور اس دوران ایرانی راشٹر کے ویر سپوتوں کے شور کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. پچھلے کاریکرم کی چرچا کو جاری رکھتے ہوئے اسلامی کرانتی کے سنستھاپک سورگیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ دوارا یو این سرکشا پریشد کے پرستاو 598 کے سویکار کیے جانے سے 3 مہینے پہلے فاو کے پتن کے پریڑام کی سمیکشا کریں گے. فاو کے پتن کے دو اہم پریڑام جنگ کے سنترن میں بدلاؤ اور منو ویگیانک سنترن کا بگڑنا تھا. اس استھتی کے پیدا ہونے سے اس بات کی پربل سمبھاونا بنی کی جنگ کا انداز بدلنے سے اس کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے.
فاو کے پتن کی پرکریا جنگ کے سنتولن میں اس کے نرنائک اثر کے مد نظر عراق کے باسی شاسن کے لیے بہت اہم تھی. نئے حالات میں عراق کے حملوں سے نپٹنے میں فورسز کے کیندریکرن کے لیے ایران کی رکشا شمتا اور اس کے مقابلے میں عراق سینا کی پہل کے باقی رکھنے اور انیہ شیتروں پر حملے جاری رکھنے کی شمتا کا جنگ کے بھوشیہ میں حالات کی پرکریا پر کافی اثر پڑا. انہی باتوں کے آدھار پر فاؤ کے پتن کے ترنت بعد صدام نے شلمچے پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا. عراقی سینا کی 3 ڈویژن نے دسیوں پیدل و بختر بند بٹالین کے ساتھ شلمچے میں ایران کی رکشا لائن کو تیزی سے توڑ دیا.
فاو کے پتن اور شلمچے میں ایران کی رکشا پنکت کے ٹوٹنے سے پہلے تک عراق کی سینی چھمتا زیادہ ہونے کے باوجود ایرانی سینا کے سرشتا کی بات ہوتی تھی. اس معاملے پر کئی تتوں کا اثر تھا. پہلا, ایرانی فوج کی آکرامک چھمتا اور اس کا اونچا منوبل جس کے پیچھے نرنتر حملے اور عراق کے بھیتر کچھ علاقوں پر اس کا نینترن تھا. دوسرا, ایرانی فورسز کی سریشتا اور بھوگولک نظر سے ایران کا وشال چھیتر پھل تھا جسے عراق پر ایران کی سریشتا کے روپ میں دیکھا جاتا تھا.
دوسرے تتو کے پوری طرح استعمال نہ ہونے کے مد نظر جیسے ہی عراق نے رکشاتمک سے آکرامک رویہ اپنایا جنگ کا سوروپ عراق کے ہت میں بدل گیا اور اتیت کے وپریت دھیرے دھیرے عراق کی شیشتا کی بات ہونے لگی. मीडिया एक्सपर्ट्स के हलकों और राजनीतिक व सैन्य टीकाकारों के बीच सबसे ज्यादा जिस विषय पर बहस हो रही थी वह जंग के खत्म होने की संभावना के बारे में थी। इस बीच इराक की बासी सेना की जीत की जंग के खत्म होने के वास्तविक चांस के बढ़ने के रूप में समीक्षा होने लगी। असल में जिन कठिन व संकटमय हालात का ईरान को सामना था उसे ईरान के रवैये में जंग को खत्म कराने की दिशा में हुए बदलाव का कारण माना जा रहा था।
पाओ और शलमचे के पतन के परिणाम में ईरान कुछ कार्यवाही करने पर तत्पर हुआ। पहली कार्यवाही के रूप में ईरान ने कूटनीतिक गतिविधियां और यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 598 के अनुच्छेद के क्रम में बदलाव की कोशिश तेज की। दूसरी कार्यवाही के रूप में लोगों से जंग के मोर्चे पर मदद की अपील की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में ईरान में तीसरे संसदीय चुनाव के मद्देनजर जो 17 जुलाई 1988 को शुरू हुआ और देश के भीतर चुनावी गहमागहमी थी, इमाम खुमैनी ने तीसरी संसद और जनता के नाम संदेश में कहा था, ईरानी जनता चुनाव से फ्री होने के बाद विगत की तरह जंग के मोर्चे और संघर्षकर्ताओं के लिए अपनी भौतिक व आत्मिक सपोर्ट जारी रखेगी और सत्य के प्रकाश में चलने वाले फौजियों का समर्थन करेगी।
इमाम खुमैनी ने शलमचे के पतन, इराक के जारी हमलों और इन घटनाओं के मनोवैज्ञानिक असर के मद्देनजर अपने संदेश में कहा था, महान राष्ट्र के सामने सत्य तक पहुंचने के फैसले, संकल्प और मजबूत इरादे से ज्यादा बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। ईश्वर ने अपनी कृपा से ईरानी जनता को इससे नवाजा है।
इराक की बासी सेना ने शलमचे से ईरानी फोर्सेस के पीछे हटने के बाद अगला कदम मजनून द्वीप पर कब्जा करने के लिए उठाया। इराक की बासी सेना की फौज से शुरू हुई हमले की प्रक्रिया मजनून द्वीप पर हमले के वक्त अपनी ताकत के चरम पर थी। इराक ने ऑपरेशन में टैक्टिक लिहाज से बेहतर था और उसने बेहतरीन अंदाज में हमला किया था। फाओ ऑपरेशन के विपरीत जिसमें उसने फ्रंट लाइन और उसके पीछे केमिकल हमला किया था, मजनून द्वीप में ईरानी जवानों को कैद करना चाहता था। इस ऑपरेशन के दो अर्थ थे, एक इराक की बासी सेना की हमला करने में पूरी तरह महारत, सफलता हासिल होने की उम्मीद और ईरानी फोर्सेस के पीछे हटने की ओर से इत्मीनान और दूसरे ईरानी फोर्सेस के जवानों और कमांडरों को कैद करने की कोशिश।
ईरान के सामने नए हालात विगत की तुलना में अच्छे नहीं थे क्योंकि एक और उसके हाथ से वे इलाके निकल गए जिन पर उसने इराक के भीतर नियंत्रण कर रखा था और इसी वजह से यूएन पर दबाव डालने के लिए उसकी पोजीशन प्रभावी नहीं थी। दूसरी ओर जंग को उस तरह से जारी नहीं रख सकता था जिसकी उसको जरूरत थी क्योंकि इराक ने उस पर हर ओर से दबाव डाल रखा था। ऐसे हालात में ईरान की जंग के मामलों की उच्च परिषद ने एक बयान जारी किया जिसमें जंग की स्थिति का वर्णन किया, आर्थिक समस्याओं को काबू करने और फोर्सेस को लामबंद करने के लिए नए फैसले का ऐलान किया।
अमेरिका ने सद्दाम के समर्थन में ईरान पर अपनी इच्छा थोपने और जंग में संघर्ष विराम की स्थिति में सद्दाम की स्थिति को मजबूत करने के लिए फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहे ईरान के यात्री विमान पर विनसेंस युद्धपोत से मिसाइल मारी जिससे ये विमान 290 मुसाफिरों के साथ फारस की खाड़ी में समा गया। ये यात्री विमान बंदर अब्बास से दुबई जा रहा था। इस घटना को मानव त्रासदी के रूप में बड़े पैमाने पर कवरेज मिला।
अमेरिका को अपनी करतूत का अंदाजा था, उसने जनमत के मन में इसके नकारात्मक असर को कम करने के लिए पहली प्रतिक्रिया में दावा किया कि जो विमान तबाह किया गया है वह सैन्य विमान था जो अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का इरादा रखता था जिसे चेतावनी देने और पायलट की ओर से लापरवाही के बाद मिसाइल से निशाना बनाया गया।
अमेरिकियों ने पहले तो अपनी करतूत के नकारात्मक असर को कम करने के लिए मीडिया को दिशा देने की कोशिश की थी। बाद में जब ये साबित हो गया कि हमले के वक्त आसमान में ईरानी यात्री विमान के अलावा कोई विमान नहीं उड़ा था, तो ये दावा किया कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह रक्षात्मक थी। इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि अमेरिकी युद्धपोतों ने अपनी रक्षा में ये कार्रवाई की।
अमेरिकी राजनेता एक और अपने खिलाफ जनमत की यलगार को रोकना और दूसरी ओर ईरान को यह बताना चाहते थे कि अमेरिका जंग में पहल अपने हाथ में लेने के लिए ईरानी जनता के खिलाफ किसी भी तरह का त्रासदीपूर्ण कृत्य करने में नहीं हिचकिचाएगा। इसी वजह से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी नौसेना की करतूत की सही ठहराया था।
ईरानी यात्री विमान को अमेरिकी युद्धपोत द्वारा मार गिराए जाने की घटना पर राजनीतिक व सामरिक मंच के साथ साथ देश के भीतर भी बहुत चर्चा हुई। इस घटना पर डिप्टी सुप्रीम कमांडर के श्री हाशमी रफ्तजानी की प्रतिक्रिया व समीक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया, जिसका कारण उनका प्रभाव व साख थी। उन्होंने ईरानी संसद में इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा को चेक करने वाली मानते हुए कहा था, देखते हैं यूएन क्या करता है, सुरक्षा परिषद क्या करती है। दुनिया में न्याय की कामना करने वाले और भले इंसानों की नजर इस केंद्र पर लगी हुई है कि देखे ये अपना कर्तव्य किस तरह अंजाम देते हैं।
फारस की खाड़ी में अमेरिका की दुश्मनी भरी करतूतों को ईरान के जवाब व झड़प के मद्देनजर श्री हाशमी रफ्तजानी के बयान को ईरान के रवैये में बदलाव के रूप में देखा गया। ऐसा लग रहा था कि ईरान ने नई विदेशी नीति अपनाई है और वह अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करके उन हालात के रुख को नहीं बदलना चाहता जिन हालात के रुख ईरानी यात्री विमान के मार गिराए जाने से ईरान के हित में मुड़े थे। इसी रास्ते पर चलते हुए ईरान ने सुरक्षा परिषद की तुरंत बैठक बुलाए जाने की मांग की।
यूएन में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा था, सुरक्षा परिषद जितनी जल्दी हो इस नरसंहार की समीक्षा करे जो दूसरे आतंकी कृत्य की पृष्ठभूमि बनेगा। इस्लामिक गणतंत्र ईरान के अधिकारी अमेरिकी अपराध का बदला लेने के बजाय सद्दाम को जंग छेड़ने वाला घोषित कराने और जंग को खत्म करने की पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश में थे।
दोस्तों, आज का प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है, हमें इजाजत दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आज कल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि हालिया दो दशकों के दौरान अमेरिका ने आतंकवाद से मुकाबले जैसे शब्दों का प्रयोग हथकंडे के रूप में किया और इससे उसने किन लक्ष्यों को साधने का प्रयास किया है। इसी बीच अमेरिका ने पूर्व हमला कर देने की नीति अपनाई और विश्व के 136 देशों में उसने छावनियां बनाकर व्यवहारिक रूप से दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। वर्ष 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, जबकि 2003 में इराक पर भी हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। इन दोनों देशों पर हमले के औचित्य में उसने कहा कि 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वां इमारतों पर आतंकवादी हमला हुआ है। अमेरिका के इस हमले ने दर्शा दिया कि वो सैनिक मार्गों से पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा में है। इस नीति का परिणाम युद्ध संकट और क्षेत्र में असुरक्षा का उत्पन्न हो जाना है।
इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने अपने बयान में बल देकर कहा है कि अमेरिका विदित में अपने दावों के खिलाफ कभी भी तकफीरी आतंकवाद का समूल विनाश नहीं करना चाहता और आतंकवादियों के एक भाग को वो भविष्य में अपने हितों व लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखना चाहता है।
अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन के रहस्योद्घाटन में आया है। दाइश के गठन में अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल की गुप्तचर एजेंसियों का हाथ था और दाइश का एक लक्ष्य पूरी दुनिया से अतिवादी तत्वों को आकर्षित करना और उन देशों के खिलाफ लड़ना है जो इसराइली अधिग्रहण के विरोधी हैं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार पर दाइश के समर्थन का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि दाइश के गठन में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की भी भूमिका थी। अफगानिस्तान, इराक, यमन और सीरिया के हालात को देखें तो बहुत अच्छी तरह यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो देश और शासन मानवाधिकार की रक्षा का राग अलापते हैं उनकी उपज दाइश ने किस तरह अफगानिस्तान, सीरिया और इराक जैसे देशों में तांडव मचा रखा है।
रोचक बात यह है कि कभी भी ये देश व शासन आतंकवादी गुट दाइश के जघन्य अपराधों की भी भर्त्सना नहीं करते हैं और इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि आतंकवादी गुट दाइश को इन देशों व शासनों का मौन व व्यापक समर्थन प्राप्त है।
दोस्तों, इस बीच इतिहास का सबसे बड़ा अत्याचार फिलिस्तीनी राष्ट्र के साथ हुआ और हो रहा है। 70 वर्षों से अधिक समय से फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया और किया जा रहा है। 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया गया और वे मजलूम फिलिस्तीनी दूसरे देशों में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही नहीं, दूसरे देशों में दयनीय दशा में शरणार्थी का जीवन बिताने वाले फिलिस्तीनियों को अपने मातृभूमि में वापसी का भी अधिकार नहीं है। फिलिस्तीनियों की खेतियों को बर्बाद किया जाता है। फिलिस्तीनियों की नज़रों के सामने उनके हजारों मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। 8,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को इसराइल की जेलों में प्रताड़ित किया जा रहा है। इन बंदियों में बहुत से बच्चे भी हैं, बहुत से फिलिस्तीनी कैदी बीमार हैं और इसराइली सुरक्षा बलों के बुरे व्यवहार और जेलों की दुर्दशा के खिलाफ वे भूख हड़ताल करते रहते हैं, परंतु इसराइल कभी भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता है।
फिलिस्तीन की मजलूम जनता के खिलाफ न जाने किस किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जैसे नौजवानों को मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज पढ़ने से रोका जाता है, रास्ता चलते फिलिस्तीनी जवानों को जानी सैनिक उठा ले जाते हैं और अपने कार्यों का औचित्य दर्शाने के लिए जानी सैनिक कह देते हैं कि उन पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा था और उन पर पत्थर फेंका जा रहा था। फिलिस्तीनियों के बहुत से जैतून के पेड़ों को काट दिया जाता है। ये इसराइल द्वारा फिलिस्तीन की मजलूम जनता के साथ किए जाने वाले अत्याचार की एक झलक है।
रोचक बात यह है कि मानवाधिकारों की रक्षा का राग अलापने वाले और स्वयं को जिम्मेदार देश कहने व समझने वाले इसराइल के अपराधों पर अर्थपूर्ण चुप्पी साधे रहते हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि 70 वर्षों से अधिक समय से फिलिस्तीन की मजलूम जनता पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी वजह क्या है। इस संबंध में जानकार हलकों का कहना व मानना है कि अमेरिका पश्चिमी और यूरोपीय देशों द्वारा इसराइल का व्यापक समर्थन है। जो देश मानवाधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, अगर इसराइल के साथ उनका रवैया तर्कसंगत होता और वे इसराइल के अत्याचारों पर आपत्ति जताते और जालिम के बजाय मजलूम का समर्थन करते, तो फिलिस्तीनी जनता पर होने वाले अत्याचार सालों पहले खत्म हो गए होते। सारांश ये कि इसराइल के प्रति अमेरिका पश्चिमी व यूरोपीय देशों का व्यापक समर्थन फिलिस्तीनी लोगों व जनता पर अत्याचारों के जारी रहने का मूल कारण है, और जब तक ये समर्थन जारी रहेगा तब तक फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार होते रहेंगे, और ये भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर पश्चिम एशिया में अमेरिकी उपस्थिति और उसकी नीतियों का परिणाम है।
इराक में अमेरिका की उपस्थिति भी अशांति का कारण बनी हुई है। अमेरिका ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करके कब्जा किया था, और उसके बाद वर्ष 2003 में उसने इराक पर कब्जा किया, और आज तक इराक में उसकी उपस्थिति जारी व बाकी है। यद्यपि इराक से बहुत से अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं, परंतु अभी भी हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक इराक में मौजूद हैं। सद्दाम के अंत और इराक पर अमेरिका के कब्जे के बाद से लाखों इराकी हताहत व घायल हो चुके हैं। आतंकवादी गुटों विशेषकर दाइश ने इराकी समाज और लोगों में जो तबाही फैलाई है, उसे आज भी इराकी समाज में देखा जा सकता है। अमेरिका और मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वालों ने कभी भी इराक में दाइश द्वारा किए जा रहे जघन्य अपराधों की भर्सना तक नहीं की। सवाल यह है कि जब अमेरिका आतंकवादी गुट दाइश से मुकाबले का दावा करता है, तो उसके जघन्य अपराधों की भर्सना क्यों नहीं करता? उसका एक जवाब यह है कि अमेरिका की कथनी और करनी अलग अलग हैं। अगर अमेरिका वास्तव में आतंकवादी गुट दाइश से मुकाबला करता होता और इसमें वो गंभीर होता, तो अब तक उसे मिट जाना चाहिए था। पर दाइश न केवल मिटा नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत होती जा रही है। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन और लीबिया जैसे देशों में उसकी उपस्थिति को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
इराक में अमेरिकी उपस्थिति के खिलाफ हर कुछ दिन पर प्रदर्शन होते रहते हैं। इराकी लोग अपने देश में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति के मुखर विरोधी हैं, और उनका ये विरोध उस समय और भी तीव्र हो गया जब अमेरिकी सैनिकों ने आतंकवाद और दाइश के लिए संघर्ष के महानायक जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस सहित उनके कई संघर्षकर्ता साथियों को शहीद कर दिया। अमेरिका ने अपने इस कुकृत्य से दर्शा दिया कि वो दाइश से मुकाबला कर रहा है, या उन लोगों से मुकाबला कर रहा है जो दाइश को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका अवैध रूप से और ताकत के बल पर इराक में गया है, और वहां पर इराकियों और गैर इराकियों की हत्या करता रहता है, और ईरान पर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का निराधार आरोप लगाता रहता है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है।
अमेरिका से पूछना चाहिए कि किस कानून के आधार पर वो इराक गया है, और इराकी सरकार से पूछे बिना वो इराकी और गैर इराकी नागरिकों पर हमले करता है, ये दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं तो क्या है? अमेरिका से पूछना चाहिए कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में कौन हस्तक्षेप कर रहा है? इराकी सरकार और वहाँ के लोग अपने देश से अमेरिका के निष्कासन की मांग कर रहे हैं, और जिस वक्त अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस और उनके कुछ साथियों को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर ड्रोन हमला करके शहीद किया था, उसके कुछ ही दिनों के बाद इराकी सांसदों ने पूर्ण व स्पष्ट बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें अमेरिकी सैनिकों का आह्वान किया गया था कि वे जल्द से जल्द इराक से निकल जाएं।
इराक में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति जहां गैर कानूनी है, वहीं इराकी अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति को इराक के शांति व सुरक्षा के लिए खतरा समझते हैं, और वे अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति को इराकी संप्रभुता के खिलाफ मानते हैं। उनका मानना है कि इराक में अमेरिकी उपस्थिति अशांति का स्रोत है। इराकियों का मानना है कि अमेरिका ने उनके देश में आतंकवादी गुट का समर्थन और उसे मजबूत किया है ताकि वो लंबे समय तक इराक में रह सके। फारस की खाड़ी में जो अशांति है उसे भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।
सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ वो किन लक्ष्यों को साधने के लिए आया है? उसका एक जवाब यह है कि पश्चिम एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र फारस की खाड़ी है और उसका सबसे लंबा तट ईरान से लगता है और इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा एक वैध जरूरत है और कोई भी बुद्धिमान इस बात को पसंद नहीं करता है कि उसके घर में आग लगाई जाए, क्योंकि अगर घर के किसी कोने में आग लगती है तो उससे पूरा घर जल जाता है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अमेरिका पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में आया है, कौन इस बात को मानेगा कि अमेरिका शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए आया है? अफगानिस्तान और इराक में उसकी उपस्थिति के परिणाम जग जाहिर हैं। अमेरिका ने ईरान इराक युद्ध के दौरान फारस की खाड़ी में ईरान के यात्री विमान को मार गिराया था जिसमें 290 यात्री शहीद हुए थे। इस कृत्य के जरिए अमेरिका ने रक्त पिपासु की अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का परिचय दिया था। अमेरिका के इस कृत्य से ये बात पूरी तरह साबित व स्पष्ट हो गई कि वो मानवाधिकारों का कितना सम्मान करता है, उसे मानवाधिकारों की कितनी चिंता है और मानवाधिकार की रक्षा का जो राग अलापता है उसकी वास्तविकता व सच्चाई क्या है।
बहरहाल इस प्रकार के अपराधों से भरे इतिहास के साथ अमेरिका ईरान पर मानवाधिकार के हनन और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाता है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। सुप्रीम लीडर का कहना है कि देश की सारी समस्याओं के लिए वैज्ञानिक समाधान तलाश किया जा सकता है। ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए तैयार हैं। इराक में तुर्की की सैन्य छावनी पर मिजाइलों से हमले हुए हैं और कश्मीर हैदरपुरा इंटरकाउंटर के पर उठ रहे हैं सवाल, परिजनों ने न्याय की मांग कर दी। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को अनुमति दें, खुदा हाफिज।